और विभीषण है। तो यदि चसी तदा सीता वसगाते भविष्यति, तो भाई इस प्रकार से महोदर बोलते हैं कि हे रावण, ये अपन पांच हैं, हम पांच व्यक्ति राम के लिए पर्याप्त हैं। और ये जो कुंभकर्ण जी बार बार आपको बोलते हैं कि सीता को दे देनी चाहिए, तो ये कुंभकर्ण जी भी वास्तव में इनका बोलना इस समय ठीक नहीं है। कुंभकर्ण ने जो ये बात कही है कि हम युद्ध के अंदर राम को हरा देंगे, ये केवल अतिवाद से कही है। अतिवाद माने ज्यादा बोलना, ये ज्यादा बोल के राम को ये युद्ध दे नहीं सकते कुंभकर्ण जी, क्योंकि कुंभकर्ण राम के सामने ठहर नहीं सकेगा। जे श्यामो जीवितम न शत्रुर वयंच कृत संयोगा। देखो हम तो युद्ध के अंदर जुड़ जाएंगे, लेकिन तुम जो बड़ी बड़ी बात बनाते हो कि हम अकेले लड़ लेंगे, ये बात तुम्हारे बस की बात नहीं है। हम तो तुमको एक योजना बताए, हे रावण तुम एक काम करो, हम तुमको एक माया बताए कि अपने पांचों जने युद्ध में जाओ और पांचों जने युद्ध में जाकर अलग अलग मोर्चों से राम के ऊपर प्रहार करो। यदि राम हमको जीत लेंगे तो कोई बात नहीं, और राम के उपाणों से ये मर गए तब भी कोई बात नहीं, लेकिन बात कब बिगड़ेगी? जब राम की सेना जीतेगी और हमारी सेना में खलबड़ाहट मचेगी, उस समय में हम लोगों को एक विद्या काम में लेनी है। रावण ने कहा, बोलो बोलो महोदर, क्या विद्या लेनी है? विद्या काम में ये लेनी है महाराज कि हम दो तीन जने आगे रहेंगे युद्ध में, और वो राम नाम से अंकित बाण हम खा लेंगे, जगह जगह हमारे शरीर में बाण लगा हुआ जिसमें राम नाम लिखा हुआ वो हमारे शरीर में अंकित रहेगा, और फिर हम लोग आकाश मार्ग से लंका में आएंगे और कहेंगे, देखो हम राम से युद्ध किए, राम ने देखो हमारे बाण मारे, इसमें देखो राम नाम अंकित है, अब हमने ऐसा युद्ध किया कि राम भी मर गए रावण भी मर गए, इसलिए हमारी विजय होगी, हमारी विजय होगी। तो इतने आदमी बोलेंगे तो भाई विजय तो अपनी हो ही जाएगी, और सीता के पास में समाचार जाएंगे, सीता बड़ी सुखी हो जाएगी। सीता के पास समाचार जाएंगे, सीता दुखी हो जाएगी, लेकिन राक्षसराज रावण आप सुखी हो जाओगे। ततो माल्यानि वासांसि, फिर तुम जो है अच्छी अच्छी चीजें ले जाए, ले जाकर के सीता जी को देना, और सीता जी उन चीजों को स्वीकार कर लेगी, और सीता जी भी बाद में विचार करेगी कि मेरा पति तो मारा गया, अब मैं उस पति को न लेकर के और अब मैं रावण को क्यों नहीं अपना पति बना लूं, वो तुमको अपने पति बना लेगी। धन धान्य काम्य कामश्च, क्यों तुम झूठा ही प्रचार कर देना कि देखो ये राम नाम संकेत बाण, राम जी की तो बाण है, ये देखो हमारे सैनिकों के लग गए और राम मर गया। अपने पास जितनी आदमियों की शक्ति है सबको राम मर गया, राम मर गया ये फैलाएंगे, फैलाने के बाद में सीता जिस दिन आपको स्वीकार कर लेगी उस दिन राम वैसे ही चला जाएगा, क्योंकि सीता के कारण से ही आया, और सीता का भी मन राम में है। यदि सीता का मन आप में हो जाए तो ये राम अभी यहाँ चला जाए, आपका भी मनोरथ पूरा हो जाए। अकामा तद वसम सीता नष्ट नाथा भविष्यति, और सीता देखो बचपन में से ही राजमहल में रही हुई, और राजमहलों में रही हुई, राजमहलों के यही आकर के विवाहित हुई, तो कहां तो भाई विदेह कुल है, कहां ये अवध कुल है। ऐसी स्थिति में सीता ने कभी दुख तो भोगा नहीं है, और अब राम के मरने का समाचार सुन लेगी तो वो देखेगी अब मैं रावण को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, तो मैं कहां जाऊंगी। और जिस दिन सीता ने तुमको स्वीकार कर लिया उस दिन तुम्हारा हे रावण सारा काम बन गया। इसलिए मुझे तो ये कपट भरी नीति अच्छी लगती है, इसमें कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि न तो कोई हिंसा है न कोई बात। एतत् सुनीतं मम दर्शनेन रामं हि दृष्ट्वैव भवेद् अनर्थः। इसलिए ये जो मैंने आपको बात कही वो बिल्कुल ठीक है, और यदि इसके बावजूद भी आप यदि राम जी के पास जाओगे तो हे राजन आपका बड़ा भारी अनर्थ होगा, क्योंकि राम अपने बाणों से आपको मार देगा। इस समय में ये छल करना बड़ा अच्छा मालूम देता है। कुंभकर्ण ने उस समय धमकाते हुए महोदर से कहा कि महोदर तुम एक योद्धा हो, योद्धा होकर के छल पूर्वक युद्ध में उतरना शोभा नहीं देता। युद्ध में ही तुमको छल करना है तो अपने शस्त्र को चला करके करो, माने ऐसे शस्त्र चलाओ इतने जल्दी से चलाओ कि शत्रु कब तो देख बाण देवे, कब धनुष पर चढ़ाए, कब फेंके इसका पता न चले, वहां तुम करो जितना तुमको छल करना है। लेकिन झूठे ही मरे हुए को जीवा बताना, जीते वाले को मरा बता देना, निहायत एक तुम्हारी बेईमानी की बात है। और कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि रावण मैंने देख लिया ऐसे ऐसे मंत्र तुम्हारे पास है ना, तभी तुम ये रावण तभी तुम रावण राम को नहीं भेज सकते। ठीक है मैं तो जा रहा हूं, मैं आज तुम्हारे यहां से जा रहा हूं, तुम सुखी हो जाओ। और देखो जो शूरवीर होते हैं वो ज्यादा बकते नहीं है, बकते हैं वो शूरवीर नहीं होते, और शूरवीर होते हैं वो बकते नहीं। आज तुम मेरा बड़ा विलक्षण पराक्रम सुन लो, पहले कहने में कोई लाभ नहीं है। न मर्षयन्ति चात्मानं संभावयितुम् आत्मनः। संभावनाओं को लेकर न तो अपने को कोई घटिया मानना चाहिए, मैं अपने को बहुत बड़ा ऊंचा ही मानना चाहिए, लेकिन मेरे पराक्रम को तुम्हारे सुरवीर आकर के मुझे कहेंगे, तुम्हें कहेंगे उसका फिर मैं क्या करूंगा। जो राजा लोग अपने को ज्यादा पंडित मानते हैं और जो दुष्कर कार्य अपने द्वारा करने में भी संकोच नहीं करते हैं, वो राजा लोग इसी प्रकार से संकट को प्राप्त होते हैं। महोदर तुमने एक बड़ी नीचता की बात कही, राम जी का बाण लगवा लो छाती में और हम राम के द्वारा मरे हुए आए हैं, घायल हमको तो उसने किया लेकिन हमने उसको मार दिया, ये बात तुम करते हो का पुरुष है, कायर की बात, साक्षात जाकर क्यों नहीं मार के आते। साक्षात तुम मारने के लिए जाओगे और वहां पर तुम मर भी जाओगे तो तुम्हारे कपट से तो तुम्हारा मरना बड़ा अच्छा है, कम से कम उस मरने से तुम स्वर्ग में तो जाओगे, लेकिन भाई राज्य को प्राप्त करोगे कपट से तो कपट से नरक मिलेगा। युद्धे का पुरुषे नित्यं भवति प्रियवादिभिः, राजानम् अनुगच्छति सर्वं कृत्यं विनाशितम्। इसलिए हे महाराज रावण आपने हमारी सारी छवि को धूल मिल कर दिया, ऐसे ऐसे मंत्रियों को आपने अपने पास में रखा, आप ही तो कहते हो कि हमारा कोष क्षीण हो गया। यदि आप हमारी बात मानते तो आज आपको ये बात नहीं कहनी पड़ती। राजा नाम इमाम आसाद्य, राजा को प्राप्त करके सब लोग निश्चिंत हो जाते हैं और आप लोग राजा लोग खुद ही चिंता करते हैं, तो बताओ फिर आप दूसरे की चिंता को कैसे दूर करोगे। ये बात सुनकर के प्रहस्त बोला, वो महोदर बोला, महोदर के बोलने से पहले रावण बोलता है, रावण बोलता है कुंभकर्ण से कि रावण ने कुंभकर्ण सुनो, ये जो महोदर है ये तो राम से बहुत डर गया है ना, इसलिए ये तरह तरह की बात बनाता है। नहीं रोचते तात युद्धम युद्ध विशारद, देखो नहीं रोचते तात युद्धम युद्ध विशारद, इसको युद्ध अच्छा नहीं लगता है, ये तो युद्ध की बातें करता है। मैंने आपको इसीलिए जगाया है, आप सोए हुए थे, जगाया इसीलिए कि आप जा करके और राम से युद्ध करो। अब ये समय आ गया है, अपने हाथ में शूल ले, अपने हाथ में पास ले, इस प्रकार से यमराज जी लेते हैं और इन बांदरों को तुम दंड दे। राम लक्ष्मण चापी हृदय प्रस्फुटिष्यत, और जहां तक राम और लक्ष्मण का प्रश्न है, हे कुंभकर्ण, ये राम और लक्ष्मण तुम्हारे वहां पर पहुंचने के बाद मारे जाते हैं। कुंभकर्ण इतनी बात सुनकर के और वहां से निकला। कुंभकर्ण जब निकला है भाई, तो उस समय उसके साथ में बहुत से सैनिक रवाना होते हैं, अपने साथ में त्रिशूल लिया हुआ। वो त्रिशूल कितना है, उसके अंदर कितना सोना लगा है, उसमें 32,000 शेर सोना लगा है, 32,000 शेर। अब 32,000 शेर में कितना क्विंटल होता है देख, क्योंकि उसके भाले के अंदर 1,000 भार सोना है। 1,000 भार का मतलब भार कितना होता है, 32 शेर का एक भार होता है, तो 32 शेर का एक भार, 32,000 शेर का वो भाला था। वो भाला वो बालमन त्रिशूल लेकर के रवाना हुआ और बड़ा सुंदर वो अपना मुकुट पहना हुआ और अपने हाथों के अंदर आभूषण पहने हुए, लाल पुष्पों की माला पहनी हुई और चारों तरफ मानो कोई आग लगी हो, ऐसे शरीर से देदी विमान वो था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण अपने हाथ में त्रिशूल लिया हुआ आ रहा है। भगवान श्री राम ने उस समय में पूछा, विभीषण से पूछा, सैनी परिवृतो गच्छे, हाँ कुंभकर्ण इसको अभी रावण ने एक बात और कही, अरे भाई तुम सेना लेकर के जाओ, तुम अकेले मत जाओ, अकेले जाओगे तो हमें बड़ा संशय लगता है। तो कहा कि ठीक है महाराज, तब उसके साथ में सेना भेजी, पहले उसका खुद का श्रृंगार किया, बढ़िया मुकुट रख दिया और उसके ये अंगुली के अंदर अंगीठी पहना दी और बढ़िया हार पहना दिया, सुगंधित सुगंधित वस्त्र दे दी और शरीर के ऊपर अच्छे वस्त्र पहनाए और अंगदों के अंदर मतलब भुजाओं के अंदर अच्छे आभूषण पहना दिए और कुंभकर्ण के कानों के यहाँ पर बड़े कुंडल वो पहने हुए। बड़ा अच्छा लगा कुंभकर्ण को, बड़ा अच्छा इसका श्रृंगार किया और श्रृंगार होने के बाद में फिर जो है कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए अपने स्थान से रवाना होता है। कुंभकर्ण भाई अनेक आभूषणों के द्वारा विभूषित हुआ, बड़ा अच्छा लगता है, हाथ में त्रिशूल पाण लिया हुआ और ऐसा लगा है जैसे कोई वामन अवतार के समय में भगवान त्रिविक्रम ही बलि महाराज के यहाँ पर आ गए हो। प्रणम में शीर्षा तस्मय, इस प्रकार से अपने भाई को प्रणाम किया और उसके भाई ने उसको आश्वासन दिया, रावण ने आशीर्वाद दिया और फिर इसके पीछे बड़ी भेड़िया बजने लगी, बड़े शंख बजने लगे, तुरिया बजने लगी और वो कुंभकर्ण युद्ध भूमि के लिए रवाना हुआ। जब कुंभकर्ण रवाना होता है उस समय राक्षस कुंभकर्ण की जय जयकार करते हैं। भगवान की सेना कुंभकर्ण को देख रही है। उस समय में एक बड़ी विचित्र लीला हुई। बड़े बड़े राक्षस अपने हाथ में शस्त्र लिए आ रहे थे और ये कुंभकर्ण लंका में रवाना हुआ तो परकोटों के ऊपर से ही आ जाता है, जैसे आप लोग रस्सी के ऊपर यूं चले जाएं, ऐसे ही कुंभकर्ण है वो लंका के जो परकोटे हैं परकोटों से ऊपर ही पैर रख के चला जाए। ऐसा आता हुआ देखा तो सब जो है घबरा गए। अद्य वानर मुख्यानाम तानी उथानी भाग से निर्दहिष्यामि संक्रुद्ध है, वह आपके बकने लगा जोर जोर से, आज सारे बांदरों को मैं मार खाऊंगा, आज मैं अपने राक्षसों को तृप्त करके रहूंगा, आज मैं राम की सेना के अंदर मूल राम है जो लक्ष्मण के साथ है इनको मार करके इनके अभिमान को दूर करूंगा, मेरे भाई को ये मारने के लिए आए थे इनका ये संकल्प दूर कर दूंगा। ऐसा उसने बड़ी बड़ी बातें की और कुंभकर्ण वहां से रवाना हुआ। कुंभकर्ण रवाना हुआ तो कई प्रकार के अपशकुन होने लगे, उल्कापात होने लगे, वायु के द्वारा बड़े अपशकुनों की आवाज आने लगी, वसुधा समा कम पता पृथ्वी कांपने लग गई, घोर रूप से ये गिद्रियां बोलने लगी, आकाश में पक्षी मंडलाकार घूमने लगे, जिनको बाई तरफ आना चाहिए वो दाई तरफ चलते हैं, जिनको दाई तरफ आना चाहिए वो बाई तरफ चलते हैं, और एक गीत था वो गीत भी एक बार आया और आकर के उसके त्रिशूल के ऊपर गिर गया। कुंभकर्ण ने इसकी कोई परवाह नहीं की, वो तो अपना यूं ही पैर रखता रखता बढ़ रहा है। शैलंग इत्वा प्राकारम पद्याम पर्वत सन्निभे, और वो लंका के प्रकोटों को घर के अंदर के कमरों को जैसे लांग के जाता है ऐसे लांग के चला गया। उस समय में वायु थी वो दबी दबी चल रही थी और उस समय बांदरों की सेना में बड़ा भय छा गया था। कुंभकर्ण जाके वहां जोर से नाद किया, आवाज लगाई, उस आवाज से बिचारी बांदरों के प्राण संकट में पड़ गए। पेतुर धरण्या बहव विहंगा, अब जो है पृथ्वी के ऊपर बहुत से पक्षी गिर गए, बहुत से पशु गिर गए, जिसमें बांदर भी इधर उधर भाग गए, कोई गिर गए, और विपुल परिघवान से कुंभकर्ण ने अपने हाथ में बहुत बड़ा परिघ लिया हुआ कुंभकर्ण और ज्यादा बलवान होकर के और वो राम जी की सेना की ओर आ रहा है। भगवान श्री राम के साथ युद्ध करने के लिए कुंभकर्ण को जगाया गया, प्रोत्साहित किया। कुंभकर्ण एक स्पष्टवादी योद्धा था। कुंभकर्ण ने रावण से स्पष्ट कह दिया कि युद्ध तो मैं करूंगा लेकिन युद्ध करना, ये युद्ध छेड़ना तुम्हारे लिए धर्म की बात नहीं थी। महोदर ने कहा कि देखो तुम धर्म की चर्चा मत करो क्योंकि धर्म और काम में हम लोगों के लिए काम ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि धर्म का फल तो बहुत दिनों के बाद मिलता है और अपने धर्मार्थ काम में जो काम है इसका फल इस लोक में हमको मिलता है। धर्म और अर्थ का सेवन उन लोगों के लिए है जिन लोगों के जीवन में कई प्रकार के व्यवधान भी आए और उनको सहते चले जाएं। हम तो भाई ऐसे हैं कि काम करें और हमको तत्काल फल मिले वो काम अच्छा है। एक नीति भी बताई कि झूठे ही हम प्रचार कर देंगे कि देखो हम राम से युद्ध करके आए, राम ने हमको मारा, हमने राम को बाण मारा, ये देखो राम नाम से अंकित बाण है। असहाय सीता को रावण को स्वीकार करना ही पड़ेगा। ऐसी ऐसी बातें चली और फिर कुंभकर्ण रावण से विदा होकर युद्ध भूमि के लिए चल रहे हैं। वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं कि वो कुंभकर्ण वास्तव में एक विशाल काय पर्वत के समान ही था। वो नगर से बाहर आया, बहुत गर्जना करते हुए आ रहा था। नगर के परकोटे तो उसके लिए बहुत मामूली चीज थे, यूं ही लांग के निकल के आया। बड़े बड़े बानर जिन बानरों के लिए बड़ी महिमा कही जाती थी, वो नील बानर, नल बानर, गवाक्ष बानर, गवय बानर, कुमुद इत्यादि इत्यादि महाबलवान बानर भी कुंभकर्ण को देख करके भगने लगे। अंगद ने कहा कि अरे आप इतने महान बानर होकर एक राक्षस के सामने भग रहे हो, आप अपने कुल को संभालो, आप अपनी ताकत को संभालो। आप तो कहते थे कि मैं एक अकेला सारी लंका को चाट जाऊंगा, मैं लंका को यूं कर दूंगा, आप भगते हो। छोटे बंदरों के समान आपने कहां ही युद्ध में पलायन की सोच ली। युद्ध में नहीं भगोगे तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। हे बानरों, प्राण तो यूं ही जाएंगे, ऐसा अच्छा मौका नहीं मिलेगा। प्राण तो जाना ही है, तो नालम युद्धाय वही रक्षा महतीयम विभीषिका। युद्ध के अंदर जब कोई बड़ा योद्धा आता है तब अपना ज्ञान होता है। भाई इस राक्षस के साथ युद्ध करेंगे, मरेंगे तो भी ज्ञान होगा, और यदि हम इसको मार देंगे तो हम चाहते ही है। पर आप भाग जाओगे तब किसको मारोगे, कैसे मारोगे, ये तो बुद्धिमानी की बात नहीं। निवर्तत भम, वापस लौट जाओ। वधम इष्यामि, विधम इष्यामि, हम इसका अवश्य वध करेंगे, ऐसा मन में उत्साह रखो। बड़ी मुश्किल से अंगद ने उन बानरों को बुलाया और वे बानर उस समय में कुंभकर्ण को देखकर तरह तरह से कुंभकर्ण के ऊपर प्रहार करने लगे। पर्वत शिखर ले लिए बड़े ऊंचे ऊंचे, पर्वतों की शिलाएं ले ली और बड़े बड़े वृक्ष ले लिए, शिलाएं ले ली और सब प्रकार के अपने पास में जो शत्रु सेना के शस्त्र थे वो शस्त्र लिए, खोज खोज करके, छीन छीन करके, उन सब से एक साथ कुंभकर्ण के ऊपर आक्रमण किया। परंतु कुंभकर्ण ने उन पर्वत शिखरों को कुछ नहीं समझा। कुंभकर्ण के पास में यद्यपि त्रिशूल था लेकिन वो पर्वत शिखरों को हाथ से धक्का दे देता है। बंदर लोग उस समय में बहुत डर गए। केचित समुद्रे पतिता, अब वो बंदरों के बीच में आया तो पछाड़ा लगाना चालू किया बंदरों का, तो उसके हाथ के धक्कों से बंदर लोग जा करके समुद्र में पड़ने लगे। कई बंदरों ने देखा कि चलो भगो यहां से, तो जिस समुद्र के पुल से लंका में आए थे उधर उल्टे ही मुड़ने लग गए। अभी तक खूब सी सेना आ रही थी, अभी तक भी देखो ऐसा भी आता है कि बंदर इतने थे कि रावण के मर जाने के बाद भी अभी बंदर आ रहे थे। उनको कहा कि रावण मर गया तो भी हम लंका तो जाके आएंगे, उसके बाद भी आए। अब ये बंदर जाकर कह रही हूँ वापिस आ रहे थे। अब यहाँ पर कोई लाख दो लाख बंदर चले जाए तो क्या फर्क पड़ता था उनके, लाख दो लाख बंदर आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। ते स्थलान तदा निम्नम विवर्ण बदना भया, के वहां पर नीचा मुंह किए हुए बेचारे इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में डूब गए, कोई गुफाओं में चले गए, कई वृक्षों पर चले गए, कई पृथ्वी के ऊपर पसर गए जैसे कोई हम मर गए हो। सुप्ता मृता कुंभकर्ण के सामने उनकी बड़ी हालत खराब हुई। अंगद ने उन सबको कहा कि अरे भाई बांदरों, तुम बार बार कितनी मुझसे बात सुनोगे, इस पृथ्वी के ऊपर तुम भग करके कहां जाओगे, तुम्हारे जितने स्थान है उन सब स्थान हमारे देखे हुए, जो जान बचा के यहाँ से चला गया और सोचेगा कि मैं इतनी बड़ी पृथ्वी है कहीं जाकर के मैं विश्राम करूंगा, वहां से हम छीन करके उसको मारेंगे, देख लेना। स्थानम सर्वे निवर्तक, हम युद्ध के अंदर भगने का अर्थ क्या होता है, और सब लोगों को जो युद्ध में लड़ रहे हैं उनको कायर करना है, स्वयं भी कायर हो दूसरों को भी तुम कायर बनाते हो। दारायु पशिष्यन्ते, तुम जाओगे तुम्हारी स्त्रियां कहेगी क्यों भाई राम जी सीता को ले आए, रावण मारा गया, नहीं नहीं हम तो बीच में आ गए, तो तुम्हारे घर की स्त्रियां तुम घर में अंदर आने नहीं देगी, तुम्हारा उपहास करेगी और बार बार तुमको डांटेगी फटकारेगी कि तुम इतनी बड़ी बात करने वाले, डींग हांकने वाले आज इस प्रकार से प्राकृतिक बंदरों के समान चंचल बंदर निकले, वे बड़े दुष्ट हैं बानर जो भय के कारण से यहाँ चले जाएंगे, बड़ी सभा के अंदर उनकी बेइज्जती होगी, इसलिए ये बड़ा भारी अपवाद हो जाएगा कि जो भक्कर के आएगा जिएगा वो धिक्कार के योग्य होगा, धिक्कार तुम्हारे जीवन को, महापुरुषों ने जो हमारे लिए मार्ग बनाया उसका सेवन करो, मृत्यु से मत डरो क्योंकि मृत्यु तो अवश्यम भावी है। यदि आप लोग भक्ते और भक्ते में भी किसी की मृत्यु हो जाएगी तो टल जाओगे तुम, मृत्यु से टल जाओगे नहीं टल सकते। देखो यदि हम लोग यहाँ मरेंगे तो ब्रह्मलोक को प्राप्त होंगे, जिंदे रह गए तो हमको कीर्ति मिलेगी, दो ही तो बात होगी, इसलिए हे बांदरों डरो मत। ये कुंभकर्ण कोई ऐसी चीज नहीं कि जो हम लोगों के द्वारा जीती न जा सके। दीप्यमानम निवास साध्य पतंगो ज्वलनम यथा, देखो पतंगा होता है वो भी आग के अंदर गिर करके अपने को समाप्त कर देता है, क्योंकि उस पतंगे को उस आग से प्रेम होता है। आपको भी इस युद्ध से प्रेम होना चाहिए, इस युद्ध रूपी आग में आपको अपने को झोंक देना चाहिए। पलायन नहीं, ये पलायन करोगे तो अच्छी बात नहीं है, तुम्हारा यश का नाश होगा, तुम्हारा परलोक का भी नाश हो जाएगा। इस प्रकार से जब अंगद बोलने लगे तब ये बंदर जोर जोर से कहने लगे, देखो अंगद जी इस कुंभकर्ण ने बड़ा भारी बांदरों का विनाश किया है, हम लोग इस कुंभकर्ण के साथ में युद्ध नहीं कर सकते हैं। कुंभकर्ण के साथ में युद्ध करने का अर्थ है कि अनावश्यक अपनी मृत्यु को बुला लेना, हम एक समय के लिए छिप रहे हैं, कुंभकर्ण के मरने के बाद हम आ जाएंगे। इतना कहकर के वे बांदर भागने लगे, उसकी मोटी मोटी आंखें देख करके भागने लगे। अंगद ने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया, उनको सांत्वना दी और उनको कहा कि देखो आप लोग कम से कम पीछे तो रहो, देखो बांदरों आप लोग भगोगे तो आपको भक्तावा देखकर इसके मन में अत्यंत उत्साह होगा। ये कुंभकर्ण पहले हम लोगों को मारने के बाद तुम तक पहुंचेगा, तो हमारी मृत्यु को देख करके क्या तुमका उत्साह नहीं होता है, कुंभकर्ण को देखकर तुम्हारे मन में भगने की इच्छा होती है लेकिन हम लोगों को देखकर तुम्हारे मन में रुकने की इच्छा क्यों नहीं होती, प्राण हमारे में भी है। आज्ञा प्रतीक्षा स्तुष्ट सर्वे वानर इंद्रपा। आप लोग हमारे मरने से पहले मत मरो, पहले हमको मरने दीजिए, हमारी मृत्यु देख लीजिए, उसके बाद आप मरना। ऐसी बात सुनी तो बानरों के मन में धैर्य हुआ कि अरे अपने से बड़े बड़े बानर तो आगे खड़े हैं, अपन क्यों मरे। और ऋषभ है, शरभ है, मैंद है, धूम्र है, नील है, कुमुद है, सुषेण, गवाक्ष, रंभ, तार, विपद, पनस, वायुपुत्र, हनुमान, ये सब ताल ठोक करके कुंभकर्ण के सामने खड़े हो गए। अंगद के वचनों को सुनकर के बहुत से बानरों की बुद्धि थोड़ी